दोहरे मानक और विस्थापन की कहानी। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष एक गहरे जड़े जमाए हुए संघर्ष है जो ऐतिहासिक विसंगतियों और समकालीन अन्यायों से चिन्हित है जो हिंसा और विस्थापन के चक्र को बनाए रखता है। यह निबंध चार प्रमुख विषयों की जांच करता है: नाजी उत्पीड़न से भागी यहूदी प्रवासियों को शरण देने में फिलिस्तीन की ऐतिहासिक भूमिका, जो बाद में स्वयं विस्थापित हो गए, ज़ायोनी अर्धसैनिक बलों और बाद में इसराइल द्वारा आतंकवाद का उपयोग, जबकि दूसरों को आतंकवादी करार देना, मानवाधिकार मानदंड जो इसराइल के निर्माण को संभव बनाते थे लेकिन अब फिलिस्तीनियों के खिलाफ उल्लंघन किए जा रहे हैं, और 1947 के संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना की अनुचितता, जिसके बाद इसराइल का अवैध विस्तार हुआ। ये विषय दोहरे मानकों, नैतिक विरोधाभासों और कानूनी उल्लंघनों का एक पैटर्न उजागर करते हैं, फिलिस्तीनी अधिकारों को कमजोर करते हैं और निष्पक्ष समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। शरण स्थल के रूप में फिलिस्तीन अब विस्थापित। 1930 और 1940 के दशक में नाजी जर्मनी ने यहूदियों को निष्कासित किया, न्यूरेमबर्ग कानूनों 1935 के तहत उनकी नागरिकता छीन ली और 1938 के एंश्लुस के बाद उत्पीड़न को बढ़ाया। जुलाई 1938 में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट द्वारा शुरू की गई इवियन सम्मेलन शरण प्रदान करने में विफल रहा। 32 देशों ने भाग लिया, लेकिन केवल डोमिनिकन गणराज्य और कोस्टारिका ने महत्वपूर्ण संख्या, क्रमशः 1,00,000 और 200 परिवार स्वीकार करने की पेशकश की, जबकि संयुक्त राज्य और ब्रिटेन ने कोटा बढ़ाने से इनकार कर दिया। सीमित विकल्पों के साथ कई यहूदी ब्रिटिश मैंडेट फिलिस्तीन की ओर रुख किए, जहां ब्रिटिश मैंडेट ने 1917 के बाल्फोर घोषणा के तहत प्रवास को सुगम बनाया। 1933 से 1939 तक 1,20,000 से अधिक यहूदी आए, और 1947 तक यहूदी आबादी 33% 1.9 मिलियन में से 6 लाख तक पहुंच गई। इस संदर्भ में फिलिस्तीन ने यहूदी शरणार्थियों को स्वीकार किया और बचाया, जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों ने उन्हें ठुकरा दिया। आज इस इतिहास को ज़ायोनी कथन द्वारा उलट दिया गया है कि कोई भी देश फिलिस्तीनियों को स्वीकार नहीं करना चाहता। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और गाजा में इसराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद से संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार 1.9 मिलियन फिलिस्तीनी 2.1 मिलियन में से विस्थापित हो चुके हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच HRW इन कार्रवाइयों को जिनेवा सम्मेलनों के तहत युद्ध अपराध, जबरन स्थानांतरण के रूप में दस्तावेजित करता है, जिसमें निकासी आदेश, सुरक्षित क्षेत्रों पर हमले और गाजा के 70% आवास का विनाश शामिल है। इसराइली अधिकारी जैसे वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोटरिच ने गाजावासियों के लिए स्वैच्छिक प्रवास का सुझाव दिया है, जिसका अर्थ है कि उनका विस्थापन संघर्ष को हल कर देगा। यह कथन जॉर्डन, चिली और जर्मनी जैसे देशों में 6 मिलियन फिलिस्तीनी प्रवासी समुदाय को नजरअंदाज करता है, और इस तथ्य को कि इसराइल की नाकेबंदी और गाजा की सीमाओं, उदाहरण के लिए रफा क्रॉसिंग पर नियंत्रण, फिलिस्तीनियों को बाहर निकलने से रोकता है, न कि अंतर्राष्ट्रीय इच्छा की कमी। विडंबना स्पष्ट है, इसराइल जो आंशिक रूप से उन शरणार्थियों द्वारा बनाया गया था जिन्होंने फिलिस्तीन में शरण पाई थी, अब फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित करता है, जबकि यह दावा करता है कि कोई और उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, विश्व मानवाधिकार घोषणा अनुच्छेद 13 के तहत उनकी मातृभूमि में रहने के अधिकार का उल्लंघन करता है। आतंकवाद की निरंतरता। ज़ायोनी अर्धसैनिक बलों हिरगुन और लेही ने ब्रिटिश मैंडेट के दौरान ऐसी रणनीतियों का उपयोग किया जो आज आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश को निष्कासित करना और एक यहूदी राज्य को सुरक्षित करना था। मेनकेम बेगिन के नेतृत्व में इरगुन ने 1946 में किंग डेविड होटल पर बमबारी की, जिसमें 91 लोग मारे गए, 41 अरब, 28 ब्रिटिश, 17 यहूदी। 1948 में देव यासीन नरसंहार, जो इरगुन और लेही द्वारा किया गया, ने 100 से अधिक फिलिस्तीनी ग्रामीणों को मार डाला, जिससे बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और नकबा तीव्र हुआ। अन्य कृत्यों में 1947 में ब्रिटिश सर्जेंट्स क्लिफर्ड मार्टिन और मार्विन पाइस की फांसी, अरब बाजारों में बम विस्फोट और 1946 में रोम में ब्रिटिश दूतावास पर बमबारी जैसे अंतर्राष्ट्रीय हमले शामिल थे। लेही ने 1944 में लॉर्ड मॉयने और 1948 में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ फोल के बर्नाडोट की हत्या की, जिसमें बाद वाला संभवतः इजरायली राज्य की भागीदारी के साथ था। ये कृत्य नागरिकों को निशाना बनाना, भय फैलाना और राजनीतिक लक्ष्यों का पीछा करना आधुनिक आतंकवाद की परिभाषाओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 4960/1994 के अनुरूप हैं। बेगिन, जिन पर MI5 ने 10,000 पाउंड्स का इनाम रखा था, बाद में इसराइल के प्रधानमंत्री 1977-1983 बने और लिक्विड पार्टी की स्थापना की, जिसका नेतृत्व आज बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। तब से इसराइल ने ऐसी कार्रवाइयां की हैं जो इस हिंसा को दर्शाती हैं, जिन्हें अक्सर आत्मरक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन आतंकवाद या अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में आलोचना की जाती है। 2006 में इसराइल ने बेरूत रफीक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बमबारी की, नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और हजारों को फंसा दिया, जिसकी HRW ने सैन्य आवश्यकता की कमी के कारण निंदा की। 1973 में इसराइल ने लिबियन अरब एयरलाइंस की उड़ान 114 को मार गिराया, जिसमें 113 में से 108 लोग मारे गए, एक ऐसा कृत्य जिसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO ने अवैध माना। इसराइल ने 2001-2002 में गाजा की यासर अराफात अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी नष्ट कर दिया, जो 2007 की नाकेबंदी के तहत फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर व्यापक प्रतिबंधों का प्रतीक है। फिर भी इसराइल हमास के नेताओं को आतंकवादी कहता है, उन्हें हत्या के लिए निशाना बनाता है। उदाहरण के लिए तेहरान में इस्माइल हनिया जुलाई 2024 और रफा में याहिया सिनवार अक्टूबर 2024, जबकि अपनी स्वयं की इतिहास को नजरअंदाज करता है। हमास, जिसे अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आतंकवादी समूह नामित किया है, ने इजरायली नागरिकों पर हमला किया, लेकिन गाजा में 2007 की नाकेबंदी के तहत फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर व्यापक प्रतिबंधों का प्रतीक है। फिर भी इसराइल हमास के नेताओं को आतंकवादी कहता है, उन्हें हत्या के लिए निशाना बनाता है। उदाहरण के लिए तेहरान में इस्माइल हनिया जुलाई 2024 और रफा में याहिया सिनवार अक्टूबर 2024, जबकि अपनी स्वयं की इतिहास को नजरअंदाज करता है। हमास, जिसे अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आतंकवादी समूह नामित किया है, ने इजरायली नागरिकों पर हमला किया, लेकिन गाजा में इसकी राजनीतिक भूमिका और बयानबाजी में बदलाव, उदाहरण के लिए 2017 का चार्टर को नजरअंदाज किया जाता है, जिससे इसे वह वैधता नहीं मिलती जो बेगिन को प्राप्त हुई थी। यह दोहरा मानक ज़ायोनी और इसराइली हिंसा को माफ करना जबकि फिलिस्तीनी प्रतिरोध की निंदा करना संघर्ष के चक्र को बनाए रखता है। मानवाधिकार, इसराइल को सक्षम करना, फिलिस्तीनियों का उल्लंघन। मानवाधिकार मानदंड जो मैंडेट के दौरान ब्रिटिश को प्रतिबंधित करते थे, ने इसराइल के निर्माण को संभव बनाया, लेकिन वही मानदंड अब इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के खिलाफ उल्लंघन किए जा रहे हैं। ब्रिटिश मैंडेट ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन के सभी निवासियों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा, जो प्रारंभिक मानवाधिकार सिद्धांतों को दर्शाता था। इरगुन और लेही के विद्रोह का सामना करते हुए ब्रिटिश प्रतिक्रिया संयमित थी। ऑपरेशन शाह 1946 में गिरफ्तारियां और कर्फ्यू शामिल थे और पकड़े गए उग्रवादियों को इरिट्रिया, केन्या और साइप्रस के शिविरों में निर्वासित किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश से बचा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की थकावट, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विशेष रूप से हॉलोकॉस्ट के बाद अमेरिका से, और उभरते मानवाधिकार मानदंडों ने असामान्य बल प्रयोग को सीमित किया। गाजा में इसराइल की तरह अधिक क्रूर प्रतिक्रिया ने ज़ायोनी आंदोलन को कुचल दिया होता, जिससे 1948 में इसराइल की स्थापना रुक जाती। आज इसराइल फिलिस्तीनियों के साथ अपने व्यवहार में इन मानदंडों का उल्लंघन करता है। अक्टूबर 2023 से इसराइल की गाजा में अभियान ने 1.9 मिलियन लोगों को विस्थापित किया, 43,000 से अधिक को मार डाला और 70% आवास को नष्ट कर दिया, ऐसी कार्रवाइयां जिन्हें HRW जबरन स्थानांतरण एक युद्ध अपराध के रूप में वर्गीकृत करता है। 2007 की नाकेबंदी सामूहिक दंड का गठन करती है, जो चौथे जिनेवा सम्मेलन के अनुच्छेद 33 के तहत निषिद्ध है और आवश्यक वस्तु 4056 तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है। तीसरे देशों में लक्षित हत्याएं, जैसे ईरान में हनिया की हत्या, संप्रभुता का उल्लंघन करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत गैर न्यायिक हत्याओं के बारे में चिंताएं पैदा करती हैं। विडंबना गहरी है, 1940 के दशक में यहूदी आबादी की रक्षा करने वाले मानदंड अब नजरअंदाज किए जाते हैं, क्योंकि इसराइल के कार्य फिलिस्तीनियों के जीवन, आवाजाही और स्वनिर्णय के अधिकारों को कमजोर करते हैं। अनुचित विभाजन, अवैध विस्तार। 1947 का संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना संकल्प 181 स्वाभाविक रूप से अनुचित था, जिसने मैंडेट फिलिस्तीन का 56% 14,100 वर्ग किमी एक यहूदी राज्य के लिए आवंटित किया, जो अल्पसंख्यक आबादी 33% 6 लाख लोग के लिए था, जिसके पास केवल 7% भूमि थी, जबकि अरब बहुमत 67% 1.3 मिलियन को 43% 11,500 वर्ग किमी मिला। यरूशलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर होना था। यहूदी नेतृत्व ने इस योजना को राज्य की ओर एक कदम के रूप में स्वीकार किया, जबकि अरब नेतृत्व ने इसे अस्वीकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि यह स्वनिर्णय का उल्लंघन करता है। इसके बाद की 1947-1948 की गृहयुद्ध और 1948 की अरब इसराइल युद्ध ने इसराइल को फिलिस्तीन के 78% 20,770 वर्ग किमी तक विस्तारित करने के लिए प्रेरित किया, जिसने 7,50,000 फिलिस्तीनियों को विस्थापित किया। नकबा, देर यासीन जैसे नरसंहारों ने इस पलायन को बढ़ावा दिया। यह 56% इसराइल के लिए पर्याप्त नहीं था, जो तब से कब्जे, बस्तियों और अधिग्रहण के माध्यम से अवैध रूप से विस्तारित हुआ है। 1967 की 6 दिवसीय युद्ध ने इसराइल को वेस्ट बैंक, गाजा, पूर्वी यरूशलम और गोलन हाइट्स पर कब्जा करने में सक्षम बनाया। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के परामर्शी राय ने इस कब्जे को अवैध घोषित किया, जिसमें वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम में 7 लाख से अधिक बस्तियों के माध्यम से फिलिस्तीन स्वनिर्णय के उल्लंघनों का हवाला दिया गया, जो चौथे जिनेवा सम्मेलन के अनुच्छेद 49 के तहत अवैध हैं। फिलिस्तीनी नियमित रूप से निष्कासन का सामना करते हैं, जैसे शेख जर्राह में बस्तियों के लिए जगह बनाने के लिए। इसराइल का 1980 में पूर्वी यरूशलम को अपनी अविभाजित राजधानी के रूप में अधिग्रहण अवैध है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संकल्प /re/ES 1024/2024 ने पुनः पुष्टि की, जो बस्तियों और अलगाव दीवार की भी निंदा करता है। ये कार्य इसराइल के नियंत्रण को मजबूत करते हैं, अनुक्रमीय प्रभाव पैदा करते हैं जो अधिग्रहण के समान हैं, फिलिस्तीनियों को और अधिक विस्थापित करते हैं और विभाजन योजना में निष्पक्षता के सिद्धांतों का खंडन करते हैं। निष्कर्ष: इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष ऐतिहासिक विसंगतियों और समकालीन अन्यायों से चिन्हित है जो गहरे दोहरे मानकों को उजागर करते हैं। फिलिस्तीन ने यहूदी प्रवासियों को शरण दी जब दुनिया ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, लेकिन अब इसराइल फिलिस्तीनियों को विस्थापित करता है जबकि यह दावा करता है कि कोई उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, उनकी दुर्दशा में अपनी भूमिका को नजरअंदाज करते हुए। ज़ायोनी अर्धसैनिक बलों ने एक राज्य बनाने के लिए आतंकवाद का उपयोग किया और इसराइल ने बाद में समान कार्य किए, हवाई अड्डों पर बमबारी, हवाई जहाजों को मार गिराना, जबकि हमास को आतंकवादी करार देता है बेगिन के आतंकवादी अतीत के बावजूद। मानवाधिकार मानदंड जो इसराइल के निर्माण को संभव बनाते थे, अब फिलिस्तीनियों के खिलाफ उल्लंघन किए जा रहे हैं, जैसा कि गाजा में जबरन स्थानांतरण और नाकेबंदी से स्पष्ट है। 1947 का अनुचित विभाजन, इसके बाद बस्तियों और अधिग्रहण के माध्यम से इसराइल का अवैध विस्तार, इस विस्थापन के पैटर्न को जारी रखता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये विरोधाभास जवाबदेही और एक ऐसे समाधान की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं जो फिलिस्तीन स्वनिर्णय का सम्मान करता हो, इस संघर्ष के केंद्र में ऐतिहासिक शिकायतों और समकालीन अन्यायों को संबोधित करता हो।